ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों।
बाबा, हम बच्चों को संगम युग पर सुख देते, शांति तो हमारे गले का हार है, लेकिन संगम युग पर सुख देते हैं? देते हैं सुख? कौन सा सुख देते हैं? सुख तो नहीं देते, अतीन्द्रिय सुख तो देते हैं, लेकिन सुख देते हैं? देते हैं सुख? सुख स्वरूप बना देते हैं, लेकिन सुख देते हैं प्रैक्टिकल में? सुख तो सुख धाम में मिलेंगे, संगम युग पर बाप सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? अभी दुख धाम में है तो सुख तो मिलेगा सुख धाम में, यहाँ तो नहीं है ना सुख, यहाँ तो दुख परम अपार है। सुख पाने के लिए तो हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, शांति तो शांति धाम में मिलेगी, सुख तो सुख धाम में मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख की तो बात यही है, लेकिन संगम युग पर बाप हम बच्चों को सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। इसका कारण बाबा ने बताया है, कोई बताएंगे? क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, बेहद का बाबा हिस्सा नहीं बांटते। सुख का रास्ता बताते हैं, जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर। 21 जन्म के लिए हमको सुख बाबा देते हैं, इसका सारा मदार है पुरुषार्थ पर। रावण भी दुख नहीं देता, वो तो सुख की बात सुनी, अब रावण भी दुख नहीं देता तो क्या देता है? दुख का रास्ता बताता है। मीठे बच्चे सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक होना चाहिए। हाथ उठाओ जो मास मास ज्ञानामृत मैगजीन निकलती है, जो मैगजीन पढ़ते है वो हाथ उठाओ। हाँ, बहुत पढ़ते है, बहुत नहीं पढ़ते, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। इसलिए मैगजीन जरूर पढ़नी चाहिए। मैगजीन में आता है, सर्विस समाचार भी आते हैं, पुष्प पत्र में भी आते हैं। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उनका समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा कि फलाने फलाने जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुशारत भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी ऐसे सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, जितनी सर्विस उतना उच्च पद मिलेंगे। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है किसके लिए, सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है, बाबा कहते हैं मैगजीन कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं। कोई कहते हैं कि हम अक्षर नहीं जानते, अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए तो जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए। खुद नहीं पढ़ते हैं तो औरों द्वारा सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं भरेगा। फलानी जगह यह सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कभी वह पढ़ करके, किसको कहे वह पढ़ करके सुनाए। बहुत सेंटर पर ऐसे भी होंगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे, बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। यह तो समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करती है उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा, पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय के पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो क्या पद पाएंगे, 5 पैसे का पद पाएंगे। वहां ये ख्यालात नहीं रहती कि इसने पुरुषार्थ नहीं किया है तो यह पद मिला है। समझो किसी का दास दासी का पद है सत्ययुग में, तो वहां ये ख्यालात नहीं आएगी कि इसने पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए ये पद मिला। कर्म विक्रम की बातें सब यहां बुद्धि में है, वहां तो बुद्धि बिल्कुल प्योर रहती है। सर्विस वगैरह का कोई भी ख्यालात नहीं, पद वगैरह का कोई भी चिंता नहीं है। कलप के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। कब समझाते हैं, कलप के संगम युग पर। जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो, हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। यह दुख है, बाबा उस दिन भी कहा था दुखों की लिस्ट निकालो, और ये तो सब प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं, तो ये दुख होता है ये बच्चों को मालूम है। जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। यह है राम राज कलयुग, यह भी तुम बच्चे जानते हो, जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा, जो समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा, क्या कहेगा बाबा, कुछ भी नहीं जानते हैं। जानते हुए भी कुछ नहीं जानते हैं, कारण औरों को नहीं समझाते हैं। जानते हैं तब कहें, तो ये बच्चा बहुत अच्छा जानता है, ज्ञान को अच्छी रीति से समझा है। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करे, समाचार मैगजीन में भी आवे, वो समाचार मैगजीन में भी आए, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन, कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, जब संगम समझे, जब संगम समझे तभी ही तो भेंट कर सके सतयुग और कलयुग। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, जब संगम समझे तभी ही भेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। कलयुग में अपार सुख है या दुख है, कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। समझाओ, बोलो, अपार सुख में हम बच्चों को, अपार सुख हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं। संगम पर खड़ा करके कलयुग और सतयुग का कॉन्ट्रास्ट समझाओ और बोलो कि बाबा हम बच्चों को अपार सुख दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझाए न सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो यह पूछ भी न सके, और कोई ये पूछ भी नहीं सके, क्या नहीं पूछ सके, ये स्वर्गवासी हो या नर्कवासी हो, ये पूछ सकेंगे, कि जानता ही नहीं तो पूछेंगे कैसे। हम जानते हैं तो पूछ सकेंगे इस समय तुम स्वर्गवासी हो या नर्कवासी हो। आपसे कोई पूछे तो आप नर्कवासी हो या स्वर्गवासी हो तो क्या जवाब देंगे, संगम युग पर, क्योंकि जानते हो अभी उसी अवस्था में खड़े रहो पहली बारी, तो आप क्या जवाब देंगे, नर्क में है या स्वर्ग में है, नर्क में कहेंगे। स्वर्ग में जाने चाहते हो, वो तो कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो कहेंगे हमको शरीर छुड़ाते हैं, तो कहते नहीं हम यहीं ठीक है, यहीं मेरे लिए स्वर्ग है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने के समय क्या आ जाता है, पॉइंट्स याद नहीं रहती है, तो बाबा कहते समझाने के समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ती है, ऐसे सबका होता है, न सिर्फ महारथी लेकिन सबका ऐसे बाबा कहते होता है। बाप तो कहती है सब पुरुषारथी है, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं। बाप क्या समझ करके बात करते हैं? बाप आत्मा समझ करके बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, और बच्चे देवमान में रह करके बात करते, फर्क हो गया ना? सो भी बाबा कहते नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी जो भाई भाई है वह पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ठहरने का, कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? आत्मा समझ करके बात करने का। हम सब भाई भाई है, बाबा तो आत्मा समझ करके बात करते हैं, नेचुरल है, और हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है, अभी संगम युग चल रहा है, बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं। रावण भी दुख नहीं देते हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं, वो सुल्टा रास्ता, ये उल्टा रास्ता, रावण उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देता न सुख देता, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उतना सुख मिलेगा। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं, बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है, अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं। यहाँ तो जो पुरुषार्थ करे, कॉन्ट्रास्ट समझा, यहाँ बाप वर्षा देते हैं, यहाँ तो बाबा सुख का रास्ता बताते हैं। यहाँ जो पुरुषार्थ करे उनको इतना मिले, हिस्सा नहीं बांटते हैं, वहाँ तो लौकिक में बच्चों को मिल्कियत का हिस्सा बांट देते हैं, यहाँ बांटने की बात नहीं है, जो जो पुरुषार्थ करे उनको इतना ही पद मिलता है। बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना उच्च पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है हम सबसे जास्ती पद पाए। लक्ष्य क्या रखना है? लक्ष्य क्या रखना है? हम सबसे जास्ती पद पाए, पढ़ना है, ऐसे नहीं ये भल उच्च पद पाए मैं बैठा रहूं, ये भल उच्च पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं, हर एक को पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं बच्चों में भी कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे, वो कहावत भी है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे महाराजा महारानी, नहीं पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, दास दासी बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप ने तो रास्ता बताया है कि मुझे याद करो, इतना सहज रास्ता है, मुझे याद करो तो तुमको वर्षा मिलेगा एक ही जन्म के लिए, तो सहज रास्ता है। सिर्फ मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। जो मेरे ड्रामा में होगा, पार्ट होगा तो करेंगे पुरुषार्थ। ड्रामा पर छोड़ना नहीं है, यह तो समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब फिर क्लब की बात आए, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, तो जरूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, समझो है, इतने तो है नहीं पॉपुलेशन, 100 करोड़ होंगे क्रिश्चियन, ज्यादा होंगे। अच्छा समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पाठ बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना आत्मा विनाश होती, ना उनका पाठ कभी विनाश हो सकता। यह समझने की बातें हैं। जो समझती है तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खुटे। धारणा होती रहेंगी, औरों को भी शाहूकार बनाते रहेंगे। लेकिन फिर लेकिन बाबा डाला, लेकिन धारणा होगी तो बाबा कहते हैं औरों को समझाते रहेंगे, शाहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो अपने को भी बेबस समझती है। तकदीर में नहीं है तो अपने को भी नर्वस अथवा बेबस समझती है। टीचर कहेंगे कि नहीं बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का भी पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो। बाप को बाप के पढ़ाने का तरीका कितना सहज है तो वो बाप जाने और बाप के बच्चे जाने। और कोई इसे को नहीं जान सकते। पढ़ाने का तरीका बाबा का क्या है वो तुम बच्चे जानते हो, बाबा जानते हैं, और कोई जान नहीं सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, दुनिया से न्यारा है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? साधारण यूनिवर्सिटी तो है नहीं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेंगे, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी और ये है रूहानी। रूह पढ़ते हैं, यहाँ मनुष्य नहीं पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? रूह पढ़ते हैं। 84.5 के चक्कर में एक ही बार रूहानी बाप आकर क्या देते हैं? रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। सारे क्लब में एक ही बार रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे वो हद का ड्रामा तुम देखेंगे। फिर 3 घंटे के बाद, हद का ड्रामा 3 घंटे चलता है, देखेंगे। फिर 3 घंटे के बाद फिर रिपीट करो, तो हूबहू रिपीट होगा। यह भी 5,000 वर्ष का चक्कर हूबहू रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो, वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है, वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है, तो क्या है? वो डायरेक्ट बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या? जो तुम बच्चों को शास्त्र उठा करके पढ़े, वो तो स्वयं ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है। वो सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तो गीता पढ़ करके सुनाएंगे, पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। पेट से निकलता है तो अभी तो छोटा बच्चा है, तो बाबा कहते हैं पेट से माँ के पड़ा हुआ तो नहीं है। वेद के बाप का पाठ है पढ़ाने का। बाबा आया, प्रवेश किया और बाबा ने शुरू कर दिया पढ़ाना। और दूसरा जो गर्भ में आते हैं वो पढ़ाते हैं क्या? नहीं, बाबा अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं है, गाते भी है बाप ज्ञान का सागर है। कृष्ण के लिए तो नहीं कहते ज्ञान का सागर है। यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान के सागर है, लक्ष्मी नारायण भी ज्ञान के सागर नहीं। यही तो वंडर है, यही तो वंडर है। तुम ब्रह्म नहीं ये ज्ञान सुनाते हैं, तो हम बड़े रहे या कृष्ण बड़ा रहा? ब्रह्म नहीं है, तुम ब्रह्म नहीं ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। तुम समझाते हो, इस हिसाब से हम ब्रह्म नहीं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे फिर होंगे, नथिंग न्यू। अनेक बार ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने हैं और बनते ही रहेंगे, कोई नई बात नहीं है। मनुष्यों के समझ में जब आएगा तब मानेंगे, अब समझ में नहीं आता है तो मानते भी नहीं है। तुम जानते हो कलप कलप हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडाप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। जिसके बुद्धि में बैठ जाते हैं वो क्या होगा? बच्चे बन जाते हैं, ब्राह्मण बने। ये भी एक राज है, शूद्र देवता नहीं बन सकते। जब तक शूद्र ब्राह्मण न बने तब तक देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण माना बैठ करके पढ़ाई पढ़े, ब्राह्मण बनने के बगैर देवता कैसे बनेंगे? हरेक के बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पाते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़े, तो बाप कहते हैं विकार में गरे, फेल होते हैं, चलते चलते पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, तो बाप कहते हैं विकार में गिरे, क्या होगा? विकार में गिरे तो जो इतना समय कमाई की वो बाबा कहते सारी कमाई खत्म हो जाती है, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं। वो तो छेद आ गया ना, बाबा ने छेद बंद कर दिया, फिर छेद खुल गया तो कितना भी ज्ञान सुने तो बैठेगा नहीं, बुद्धि में बैठ जाएगा। अंदर खाता रहेगा और उनको कैसे समझा सकेंगे। खुद ही विकारों के वशीभूत है तो औरों को समझा नहीं सकते। तुम बच्चे समझ, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर है, 63 जन्म विकारों के वशीभूत होकर के पाप जरूर किए है, लेकिन याद नहीं है। याद इस जन्म की जरूर, बाबा कहते हैं जो पुण्य आत्मा थी वही फिर पाप आत्मा बनती है। हिसाब किताब बाप बैठ करके समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है, अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि भी बन जाते हैं, ऐसे भी है। कोई डल बुद्धि होंगे पढ़ाई में अटेंशन देंगे तो वो होशियार भी हो जाते हैं। बाबा कहते देखो कितनी बड़ी पढ़ाई है, इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। घराना बनता है इस पढ़ाई से ही, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनता है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। पढ़ाई इस समय और इसका पद नई दुनिया में, वह कोई दूर नहीं है, वह कोई दूर नहीं है। नई दुनिया आई कि आई, देख भी रहे हैं। जैसे कपड़ा बदल जाता है, बदला जाता है, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। विनाश भी होगा जरूर, अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, अब हम नई दुनिया के बन रहे हैं। फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है, जो अच्छी रीति से पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे। जो अच्छी रीति से पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। पीछे आना अच्छा या पहले आना अच्छा? पहले आना अच्छा। तो जो बाकी पीछे आएंगे स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगी वह भी दिल पर चरी हुई होंगी। त्रेता वाली दास दासियां दिल पर नहीं चरी होंगी। जो स्वर्ग में दास दासियां आएंगी वो दिल पर चरी हुई होंगी। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आज खोलते रहते हैं, सब आकर पुशारत करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे टिके जाएंगे वे ऊंच पद पाएंगे। दल बुद्धि कम पद पाएंगे, हो सकता है आगे चल दल बुद्धि भी अच्छा पुशारत करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चली जाती, कोई डल बुद्धि ऊपर चल जाते हैं, कोई ऊपर समझदार बच्चे फिर नीचे आ जाते हैं। पुशारत से समझा जाता है। तो कौन तीखे जा रहे हैं? कोई बीच में है, कोई नीचे गिर रहा है, कोई ऊपर जाकर के नीचे आ जाते हैं, कोई नीचे वाला ऊपर जाते हैं। बाबा कहते हैं हर एक के पुशारत से समझा जाता है। यह सारा ड्रामा चल रहा है। फिर बाबा साखी होकर के देखता है ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है? संस्कार आत्मा में ही होते हैं। ये ज्ञान बाहर में जरा भी किसके पास नहीं है। ये ज्ञान बाहर वालों में किसी के पास भी बाबा कहते हैं नहीं है। बाप जब आकर पराए तभी ही ज्ञान मिलेगा। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए। इसलिए उनको अज्ञानी और तुमको उनको अज्ञानी और तुमको ज्ञानी कहा जाता है। वह है भगत। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़ी था। वो तो द्वापर में आई है तो बाबा कहते उनको सुख थोड़ी था। क्या बीमार नहीं पड़ी होंगी? मीरा कभी बीमार नहीं पड़ी होंगी। वहां तो कोई प्रकार की दुख की बात ही होती नहीं। सतयुग में कोई भी दुख की बात ही नहीं होती। जहाँ अपार दुख है वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना? नामी है दुख धाम। वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये है समय कौन सा? संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख और कलयुग में संपूर्ण दुख है। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा अथाह दुख के पार गिरेंगे। खाने को नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, अनेक प्रकार के दुख आने वाले हैं। अच्छा, फिर कहीं भी आप जाते हो भाषण करने के लिए तो वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। 2 मिनट दे तो भी समझाओ, स्वर्गवासी हो या नर्कवासी हो। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं। रावण जो अपार दुख मिलते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं, अब बाप क्या कहते हैं हम बच्चों को? जगत जीत कैसे बनेंगे? किसी दुश्मन को जीते तो जगत जीत बनेंगे। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इसे ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। पेजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक। हरेक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी यूनिवर्सिटी कहो, स्कूल कहो, पाठशाला कहो, कॉलेज कहो, जो भी कहो, बाबा कहते ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। भगवान आकर के पराते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुण वाला देवता है। बाप कहते मैं दैवी गुणों और आशीर्वाद गुणों से न्यारा। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पराने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई मनुष्य देवता नहीं दे सकते। विष्णु देवता न मैं कहते तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है। यह कोई भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए, तब समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार न लिखो, वह फलाना आने वाला है, ऐसे कहकर गया है, यह लिखने की भी पत्र में दरकार नहीं है। कम लिखना होता है, देखो आया ठहरता है, समझ कर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई कोई शो करके समाचार देते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले भी जाते हैं, उनसे क्या फायदा, आया चले गए, आया चले गए, फायदा क्या उनको, बाबा क्या करे, ऐसी आत्मा को बाबा क्या करे, न उन्हें फायदा न तुम्हें फायदा। तुम्हारी मिशन की विधि तो अभी हुई नहीं, उसी समय थोड़े थे, अब धीरे धीरे तुम्हारी मिशन की वृद्धि होती रहेगी, उसके बाद देखो कितनी वृद्धि हो गई है, समझा, धीरे धीरे हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पे मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सभी ने बोला हाँ बाबा को नमस्ते की। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को भी बांटने हैं। वरदान है, सफल करने की विधि से, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूरत भव, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूरत भव, संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है, वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज, सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले यह हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय संकल्प संपत्ति स्वास्थ्य सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूरत बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्म अवार्ड लेने के लिए, अवार्ड मिलता है ना, किसी बात में जीत पहन लेते हैं, अच्छा काम करते हैं तो अवार्ड मिलता है। तो परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो तो अवार्ड मिल जाएगा। किससे? परमात्मा से, परमात्मा बाबा से अवार्ड मिलना है। वो किसको मिलेगा? जो व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर। ओम शांति। अब बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे और साथ साथ याद है सभी को आज किसका दिन है, किसका दिन है? मीठी प्यारी दीदी का। और दीदी के साथ सभी आत्माएं जो गई है उन सब को निमंत्रण मिला हुआ है मधुबन से, और सब बाबा के वतन में इमर्ज होंगे और बाप दादा सबको भोग स्वीकार करेंगे। उसके बाद हम सभी भोग स्वीकार करेंगे, वो भी हमारे साथी है, वो भी साथी हम सभी का इंतजार कर रहे हैं।
ओम शांति। आज आप सबकी याद लेकर जैसे ही वतन में पहुंची तो पहुंचते ही एक सुंदर सा दृश्य देखा कि वतन में एक काफी ऊंची पहाड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर बाबा, मामा और दीदी और उनके पीछे काफी सारे भाई बहने खड़े थे। तो पहले तो आगे लाइन में बीच में बाबा एक तरफ, मामा एक तरफ, दीदी और पीछे बाकी अन्य भाई बहने जिन्हें कि आज विशेष निमंत्रण भी दिया गया, वो सब भाई बहने पीछे खड़े हुए थे। तो जैसे मैं पहुंचती हूँ तो देखती हूँ कि आज तो बाबा और दीदी तो बहुत ऊंची स्टेज पर खड़े हैं और मैं भी वहाँ एक साइड में जाकर के खड़ी हो जाती हूँ। तो कुछ ही सेकंड के बाद मैं देखती हूँ कि नीचे पहाड़ी तो बहुत ऊंची है और नीचे बहुत सारे अपने बीके भाई बहने खड़े हुए हैं और नीचे खड़े हुए देख ऊपर का दृश्य को देख रहे हैं। बाबा भी उनको देख रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, हाथ से ऐसे कर रहे हैं। दीदी ने भी ऐसा किया और ऐसा करने के बाद बोलती है कि आप सब ऊपर आओ। जितने भी अपने भाई बहने थे नीचे बीके भाई बहने, सबको बोलती है कि आप ऊपर आओ। तो वो सब मुस्कराते हैं। फिर दूसरी बार कहती है आप आओ ऊपर, ऊपर आओ, हमारे पास आओ। फिर वो मुस्कराते हैं। फिर दीदी ये दृश्य देख करके बाबा को कहती है ये क्यों नहीं आते हैं ऊपर, हम सब ऊपर बैठे हैं, इतना अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, ये सब नीचे क्यों खड़े हैं? फिर बाबा कहते हैं कि देखो आपको दीदी बुला रही है, आप सब आओ। तो सब भाई बहने कहते हैं अच्छा हम आते हैं, कोशिश करते हैं। और जैसे वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो पहाड़ी बहुत ऊंची है, पहले तो ऐसे ट्राई करते हैं, कदम रखते हैं, लेकिन इतना ऊंचा है कोई साधन ही नहीं है चढ़ने का। फिर वो हंसने लगते हैं, मुस्कराते हैं। दीदी कहती है क्यों नहीं आते हैं ऊपर? फिर बाबा को कहती बाबा इनको कुछ कहो आए ऊपर। तो बाबा कहते अच्छा ठीक है सब बच्चे आओ, अपने साधन लेकर के सब ऊपर आ जाओ। तो सब बच्चे क्या करते हैं, तो जैसे स्थूल साधनों की तलाश में कोई एयर पर चढ़ने के लिए एक स्पोर्ट पकड़ लेता है, जैसे नहीं वो दिखाते कोई चढ़ने के लिए मास्क डाल लेता है, कोई इस प्रकार से भिन्न भिन्न चीजें अपने करके प्रयोग करते हैं वो सब डाल लेते हैं, और जब डाल करके खड़े होते चढ़ने लगते हैं तो दीदी जोर से हंसते हैं, बोलती है कैसा रूप हो गया है। क्यों? क्योंकि हर एक का रूप अलग अलग हो जाता है, कोई का रूप जैसे बंदर जैसा रूप हो जाता है क्योंकि ऊपर का डाला हुआ है, किसका और प्रकार से रूप है। तो दीदी हंसती है, कहती ये सब ब्राह्मण ऐसा क्यों हो गए हैं, ऐसा क्यों लग रहे हैं। तो फिर बाबा भी मुस्कुराते हैं, तो बाबा कहते हैं देखो दीदी इस समय बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं ऊंची स्टेज पे जाने के लिए, लेकिन बीच बीच में अनेक प्रकार के स्थूल साधनों को अपना आधार मान लेते हैं, तो जिसके कारण से वो चढ़ते हुए भी फिर बीच में रुक जाते हैं। तो दीदी कहती है नहीं ऐसा नहीं है ये, बाबा को कहती है कि बाबा आप कुछ और इनको शक्ति दो। बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वहां से फिर बाबा एकदम जोर से जैसे ना बड़े पावरफुल दृष्टि देते हैं, और देते जैसे पावरफुल दृष्टि देते हैं तो बाबा की दृष्टि से अनेक प्रकार की लाइट्स निकलती हैं और वो लाइट सब के ऊपर पहुंचती हैं। तो धीरे धीरे सब भाई बहने एकदम फरिश्ते जैसे ऊपर को उड़ते हैं ना, तो ऐसे वो सब फरिश्ते ऊपर को उठते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर वहां पर जैसे सब भाई बहने पहुंचते हैं तो दीदी देख करके उनको बहुत खुश होती है, कहती अच्छा हुआ आप सब आ गए, अब तो आप फरिश्ते बन गए, अभी अच्छा हुआ आप सब आ गए, अब आप मेरे साथ ही बन गए, ऐसा कहती है। बस इतना कह करके वो जैसे दृश्य पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद मैं जैसे दीदी को कहती हूँ कि दीदी आप तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर रही हैं, सदा बाबा के संग अनेक प्रकार के अनुभव कर रही हैं। तो दीदी कहती हाँ क्यों नहीं, मेरा तो बाबा के साथ शुरू का अधिकार है, मेरा तो बाबा के साथ का पार्ट है, मैं सदा बाबा के साथ बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करती हूँ और बाबा के अंग संग घूमती हूँ। तो फिर इतने में तो मैंने कहा कि दीदी अभी आप क्या कर रही हो, कहा मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ, बाबा ने जो मुझे सेवा दी है वो सब मैं सेवा कर रही हूँ, और सेवा कर रही हूँ लेकिन सेवा करते करते साथ साथ मेरे को अपने ये बीके भाई बहने भी ब्राह्मण भाई बहने भी याद आते हैं, तो वो जल्दी मेरे पास आए, हम जल्दी अपना कार्य करें, ये जल्दी क्यों नहीं आते हैं। मैंने कहा वो तो सदा आपके साथ हैं, आते रहते हैं। और फिर मैंने कहा कि दीदी इस समय सब भाई बहनों ने एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया हुआ है, खास करके मधुबन के अंदर भी और शांतिवन में भी सभी टीचर्स बहनें आपकी पुरानी सखियां सब आई हुई हैं वहाँ पर, और योग भट्टी के विशेष कार्यक्रम रखे हुए हैं जिसमें आप भी उनके साथ ही उनके अंग संग हैं, समाई हुई हैं, उनके साथ ही हैं। बोला मैं तो उनके साथ हूँ ही, पर ये सब मेरे साथ क्यों नहीं आते हैं, फिर थोड़ा टाइम आके फिर चले जाते हैं, तो मैं इनको ढूंढती रहती कहाँ चले गए मेरे साथी, तो मेरे साथी क्यों नहीं आते हैं और ये सब कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में, तो ऐसे दीदी कहने लगी। तो फिर बाबा ने कहा कि नहीं साथी तो सभी तुम्हारे साथ हैं ही और सदा साथ ही रहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि दीदी सब आपको बहुत याद भी करते हैं, कहा कि मेरे साथी जब मेरे हाथ छोड़ के चले जाते हैं ना तो फिर मुझे और याद आती है। तो मैंने कहा क्या करें जो हाथ छोड़ करके नहीं चले जाएं। तो फिर दीदी कहने लगी मैं बताऊं एक युक्ति बताऊं, मैंने कहा बताओ दीदी एक युक्ति, काफी सबको सुनाना पक्का रखेंगे उस युक्ति को, मैंने कहा मैं आपका मैसेज दे दूंगी सबको। बोला नहीं पहले तुम बोलो सब पक्का करेंगे। तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे बोलूं कि सब पक्का करेंगे, तो दीदी ने कहा वो तो पक्का करना ही है इनको। तो मैंने कहा अच्छा दीदी आप बताओ ना क्या युक्ति है। तो बोला कि बस सहज युक्ति है कि बाप दादा को सदा कंबाइंड समझें, जैसे मैं सदा बाबा को कभी अपने से अलग नहीं रखती थी, मैं बाबा को अपने साथ ही रखती थी, तो ऐसे ही सभी बाबा को अपना कंबाइंड समझें, और कंबाइन समझ करके सदा बाबा के साथ ही रहें, तो बस ये तो बाबा के पास हैं और हमारे साथ ही हैं। मैंने कहा ये तो सब इसी का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहने पुरुषार्थ करते हैं लेकिन बीच बीच में फिर वो कभी स्थूल की ओर चले जाते हैं, स्थूल बातों में चले जाते हैं, तो कंबाइन स्वरूप भूल जाता है। इतना कहा तो फिर मैंने कहा मैं आपका सबको संदेश दूंगी और सब अपना पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि दीदी इस समय अभी आप और क्या कर रहे हैं। कहा कि बाबा का जो स्थापना का कार्य है वो तीव्र गति से हम कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को कंप्लीट होने में आप सभी ब्राह्मण भाई बहनों का पूर्ण सहयोग हो तो जल्दी कंप्लीट। हमारी स्पीड तो बहुत तेज है और लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा कंप्लीट होने में रहा हुआ है, तो आप सभी भाई बहनों का पूर्ण सहयोग हो तो जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ऐसे दीदी ने कहा तो ऐसे ही कहते ही तो जो विश्व का एक गोला सामने आता है और विश्व का गोला जो जैसे ऐसे स्पीड में घूमने लगता है और जैसे वो स्पीड में घूमने लगता है तो घूमते घूमते कई स्थानों पर तो उसका रूप ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल श्रेष्ठ बना हुआ जैसे सतयुग दुनिया का नजारा, और कुछ स्थानों पर वो थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देता है। तो कहा देखो ये कितना कार्य हम कर चुके और कितना रहा पड़ा है, क्या देख रही हो। तो मैंने कहा कि हाँ दिखाई दे रहा है। तो कहा इस कार्य को करना है, मीन्स जो स्थापना का काफी सारा कार्य हो चुका है और बाकी काफी सारा थोड़ा रहा पड़ा है, तो वो थोड़ा ब्लैक भी नहीं दिखाई देता था या जैसे मिक्स कलर का दिखाई देता था लेकिन ठीक नहीं दिखाई देता था। जो गोल्डन कलर का दिखाई देता था सत्यों की दुनिया जैसा, बोला ये तो अभी हो चुका है लेकिन इस चक्कर को आने में अभी थोड़ा सा समय है, उसमें भी आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो फिर कहा कि मैं तो बस आप सबको सहयोग के लिए इंतजार है, बाबा भी आप सबका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर इतना कह करके फिर दो एक सेकंड के लिए शांत हो जाती हैं। कहा मेरे सब सखी कई और भी सखियां मेरे साथ हैं जो इस कार्य को सहयोगी बना रहे हैं। तो फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप कुछ बताएं, क्या सब भाई बहने पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं लेकिन आप बताएं क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने तो सब कुछ बच्चों को बता ही दिया है और बच्चे जानते हैं कि अभी समय तीव्र गति से बढ़ रहा है, समय की रफ्तार को देख करके अपनी रफ्तार भी वैसा ही बनाए। फिर तो इस दृश्य से पूरा हो गया। फिर उसके बाद बाबा और दीदी को मैंने देखा तो दीदी तो बाबा को देखती जाए मुस्कुराती जाए बाबा के बहुत एकदम समीप। फिर मेरे को देखा तो मुझे देख करके बड़ा खुश, तो बोले तुम भी आई हो। मैंने कहा दीदी हाँ। फिर मेरे को देखती रही, काफी दृष्टि दी। मधुबन में सब ठीक है? मैंने कहा मधुबन वाले तो सब आपको हर समय हर कार्य के अंदर याद करते हैं और बीच बीच में हम सब अनुभव करते हैं कि दीदी हमारे साथ है और हमको गाइड कर रही हैं। कहीं तो बाबा कराता है, बाबा कर रहा है। फिर मैंने कहा कि दीदी आज तो सभी ने आपके लिए विशेष याद के साथ भोग भेजा है। फिर बाबा ने दीदी को भोग स्वीकार कराया, दीदी ने ही अपने हाथों से बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर मैं यहाँ